সাদা পান্তন হস্তে মন্দি মদামোহন দিব্যবৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাদ্রীমদ্রাগারসিংহাসনস্থ্রীমদ্রাগাশীল গোবিন্দদেবৃষ্টালিবেশ্যমান শ্রীমান্নাসনসারঙ্গীবটাচকস্থিত হর্ষমেনস্তনেগোপে গোপীনাথন সপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বিশ্বানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈতাদ শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। আজ শ্রীপাদ রামানন্দাচার্য কা বিভাগ দিবস হ্যায়। আপ সব লোগ নে সুবহ শ্রীপাদ রামানন্দাচার্য কা প্রাকট্য কে লীলা সন্ন্যাস কে পহলে বালি লীলা হ্যায়। किस प्रकार संन्यास लिए, संन्यास लेने के बाद उनकी लीलाओं के बारे में आपने श्रवण किया। मुझे कहा गया है वैसे तो रामानुजाचार्य का लीलाएं अनंत है, इतने अनंत है याद है कि अभी भी और दो घंटा उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मुझे खास करके कहा गया है कि इसी बार रामानुजाचार्य के सिद्धांत के बारे में कुछ चर्चा किया जाए और गौड़ी वैष्णव सिद्धांत के साथ उसका क्या संबंध है वो चर्चा किया जाए। वैसा ये जो चर्चा है, ये जो टॉपिक मुझे दिया गया बहुत मुश्किल है। समझना तो एक तरीके से हो जाता है लेकिन उसको प्रस्तुत करना ज्यादा मुश्किल है, वो भी साधारण पब्लिक के सामने उसको प्रस्तुत करना मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर ऐसे कुछ तत्व के शब्द आते हैं उसको बोलेंगे तो लगता ही क्या बोल रहा। फिर भी जितना हो सके उतना सरल तरीके से संक्षिप्त तरीके से हम इन बातों को समझने के लिए प्रयास करेंगे। वैसे ये जो सांप्रदायिक आचार्यों का सिद्धांत का जो चर्चा, इसके ऊपर एक बड़ा विस्तार का कोर्स है, वो 10 दिन का कोर्स है, 10-12 दिन का कोर्स है जिसके अंदर कम से कम 3-12 घंटा रामानुज संप्रदाय का सिद्धांत जो चर्चा होता है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, उसका जो सूक्ष्म जो सरल बातें हैं हम जिस प्रकार समझ सकते हैं, हजम कर सकते हैं, उन बातों को चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप सबको मालूम होना चाहिए रामानुजाचार्य के सिद्धांत को जानने से पहले रामानुजाचार्य के तत्व मालूम होना चाहिए। रामानुजाचार्य कौन है? रामानुजाचार्य अनंत देव के जो भगवान को गुणगान करने की शक्ति का आवेश होता है, इज ए एम्पावर्ड इंकारनेशन ऑफ द ग्लोरिफाइंग पोटेंशियल परमात्मा। आप सबको मालूम है कि 4 संप्रदाय 4 आचार्य है, जो श्री संप्रदाय का आचार्य श्रीपाद रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य कोई और नहीं, वो अनंत देव। अनंत देव के जो भगवान को गुणगान करने की शक्ति है, अनंत देव स्वयं शक्ति आवेश होता है भगवान। भगवान के 2 प्रकार की शक्ति आवेशता होता है, एक गौण होता है, एक मुख्य होता है। जो मुख्य शक्ति आवेश होता है अनंत और शेष है। अनंत नाम जिनके ऊपर भगवान लेटे हुए हैं उनके अनंत मुखों से भगवान के अनंत गुणों में एक गुण का अनंत काल से वर्णन कर रहे हैं। तो वैसे शक्ति जिसके द्वारा अनंत देव उन अनंत भगवान का अनंत काल से एक गुणगान एक गुण को भी वर्णन करना समाप्त नहीं हुआ है। वैसे विशिष्ट शक्ति के द्वारा आवेशित एक जीव है कौन? रामानुजाचार्य। वैसे साधारण तरीके से लोग कहते हैं कि लक्ष्मण है, लक्ष्मण कोई और नहीं है, अनंत देव है लक्ष्मण, बलराम भी अनंत है जिसके साथ बलराम है, बलराम अनंत को विस्तार करते हैं। वैसे भगवान रामचंद्र के साथ लक्ष्मण है, इसलिए उनका नाम दिया गया था लक्ष्मण। तो इसलिए लक्ष्मण देशिका, लक्ष्मण भट्टा कभी कभी बोला जाता है। तो ये उनका तत्व है, रामानुज तत्व है, ये रामानुज निजी तत्व है। उन्होंने जैन पावर्ड इंकारनेशन, अगर कल से अगर कोई व्यक्ति इसको लक्ष्मण भी कहता है उससे कोई गलती नहीं है, लक्ष्मण के अवतार कहा जाए उससे गलती नहीं है, क्योंकि वो शक्ति आवेश अवतार है। तो ये तत्व जानने के बाद आपको थोड़ा सा ये भी परिचय दे देता हूँ, अन्य तीन आचार्य है तीन संप्रदाय के, उनका तत्व क्या है। श्रीपाद मध्वाचार्य वायु है, कहाँ के वायु है? वैकुंठ के वायु है, वैकुंठ के वायु का ही अवतार है, कोई आवेश नहीं उनके अंदर, यानी मुख्य प्राण जो वैकुंठ का वायु है। मुख्य प्राण का अर्थ है हमारे अंदर जो प्राण है उसका अधिष्ठान देव है, वो वायु है, वैकुंठ के वायु है जिसको मुख्य प्राण कहा जाता है। जो प्राय प्राण वायु को नियंत्रण करने वाले जो देव है वैकुंठ में, उनको मुख्य प्राण कहा जाता है। तो वो मुख्य प्राण के अवतार मध्वाचार्य। और विष्णु स्वामी वो कौन है? वो कोई और नहीं है, वही अनंत देव के मुखारविंद का प्रकाश जो है उसका अवतार है। अनंत देव से अनंत प्रकाश उत्पन्न होता है, वो प्रकाश के द्वारा आवेश होकर प्रकट हुए कौन? विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य। निम्बार्काचार्य कोई और नहीं है, वो सुदर्शन से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश है उसके अवतार है। सुदर्शन के अवतार नहीं, सुदर्शन से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश है उसके अवतार है। तो ऐसे चार आचार्यों का जो परिचय ही इतना गहरा है, इनका सिद्धांत कितना गहरा हो तो अभी हमेशा ये बात आता है, सत्य अगर एक है एक ही होना चाहिए। ये चार वैष्णवाचार्य आके ये चार अलग बातों को कहा, बाद में चैतन्य महाप्रभु इन चारों आचार्यों का सिद्धांत को निचोड़ निकाल के और एक सिद्धांत अचिन से भेद अभेद तत्वों क्यों प्रकाशित किया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय सबको जानना है। अगर ये नहीं जानते हुए अगर कोई इस चर्चा में उतरता है चार वैष्णव आचार्यों के सिद्धांतों के बीच में भेद है, ये सही है वो गलत है, इस प्रकार की चर्चा में अगर उतरता है तो निश्चित रूप में आचार्यों की चरण कमलों में अपराध कर बैठता है। इसलिए सबसे पहला जानना होगा कि ये चार वैष्णव आचार्य के सिद्धांतों में भेद क्यों है, और अचिंत्य वेद वेद तत्व जो चैतन्य महाप्रभु ने स्थापना किया वो इन चार सिद्धांतों से भिन्न कैसा है और एक कैसा है, ये पहला जानना होगा क्यों है। सबसे पहला बात है कि ये चार वैष्णवाचार्य क्यों प्रकट हुए, चार संप्रदाय क्यों है, और उन्होंने क्या किया अपनी बात सुने अपने सिद्धांत में। अपने सिद्धांत में दो बातों को दो कार्य किया ये चार वैष्णवाचार्य। एक है मायावाद का खंडन किया, दूसरा है उनकी जो भगवान के साथ संबंध है, जिस रस में संबंध है उस रस को पोषण करने जैसा सिद्धांत को रचना किया। दो बातों किया हमने, एक मायावाद का खंडन किया, दूसरा जिस सब जिस प्रकार के संबंध के साथ भगवान कृष्ण को देखते हैं उस संबंध को या उस रस को पोषण करने जैसा सिद्धांत रचना किया। तो ये दो कार्य ये सारे आचार्य ने किए, चारों के चारों आचार्य। तो सबसे पहला बात कहते हैं मायावाद। मायावाद जो है उसके अलग अलग प्रकार के पहलू हैं। मायावाद का सिद्धांत एक जैसा नहीं है, अनेकों प्रकार जैसा है। जैसे एक प्रकार का मायावाद सिद्धांत है जीवेश्वरवाद, दूसरा प्रकार का मायावाद सिद्धांत है निरीश्वरवाद, अनिर्वचनीयवाद निरीश्वरवाद, तीसरा प्रकार का मायावाद सिद्धांत है मायावाद सिद्धांत है विवक्तवाद, और एक प्रकार का मायावाद सिद्धांत है बिंबवाद। तो ये चार प्रमुख प्रकार के मायावाद सिद्धांत है। अगर चार प्रमुख प्रकार के मायावाद सिद्धांत है तो इन सब को या एक एक प्रकार के सिद्धांत को तोड़ने के लिए एक एक प्रकार के आचार्य आए, और उन्होंने क्या किया, मायावाद का एक सिद्धांत उसको विशिष्ट रूप में तोड़ मोड़ कर दिया। श्री प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के भाष्य में लिखते हैं, एक जगह कमेंट्री में लिखते हैं, प्रकाशानंद संवाद में वर्णन करते हुए कि मायावादी लोग अपने आप को वेदांती समझते हैं, लेकिन वो वेदांती नहीं है, वो विदंती है। क्योंकि हमारे जो आचार्य है, खास करके श्रीपाद रामानुज आचार्य और मध्वाचार्य, दोनों ने इन तथाकथित वेदांतियों का दांत को तोड़ तोड़ के उन्होंने विदंती बना दिया है। दांत तोड़ने का अर्थ क्या है कि मायावाद सिद्धांत जो बिल्कुल कृष्ण के प्रति ईर्ष्या का वर्णन करता है, जब जीव कृष्ण से ईर्ष्या करता है, उनके मन में जो बातें होती हैं वो सारे बातों को मायावाद सिद्धांत में लिखा गया है। तो इस मायावाद सिद्धांत को तोड़ना तो क्या कैसे समझा जा सकता है, तो इसका अलग अलग पहलुओं को तोड़ना होगा। ऐसा नहीं कि एक जगह तोड़ दिया तो दूसरा जगह वो अपने आप दूसरा जगह के प्रति लोग आकर्षित हो जाएंगे। इसलिए चारों दिशाओं से ये मायावाद सिद्धांत को आक्रमण करना होगा। चारों दिशाओं से मायावाद सिद्धांत को आक्रमण करना होगा, इसे चार तारीख चाहिए, सबसे पहले जानना होगा। तो चारों आचार्य ने मायावाद का दे हैव टेकन वन एस्पेक्ट ऑफ मायावाद एंड ब्रोकन दैट इन देयर फिलॉसफी। इसलिए चार सिद्धांत की आवश्यकता है। जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य जो है निर्विशेषवाद जो है, इस बात को उन्होंने पूर्ण तरीके से खंडन किया। श्रीपाद मध्वाचार्य ने जीवेश्वरवाद जो है उसके ऊपर पूर्ण तरीके से खंडन किया। तो आगे और इसका वर्णन नहीं करना क्योंकि फिर वापस मायावाद भाष्य क्या है उसको वर्णन करना होगा। लेकिन ये बात इतना सार्थक में जान लीजिए कि मायावाद भाष्य के अलग अलग पहलुओं को ध्वंस करने के लिए ये चार वैष्णव आचार्यों की आवश्यकता पड़ी। इससे चारों वैष्णव आचार्य अपने अपने सिद्धांत में मायावाद का एक प्रकार की भाष्य को, एक पहलू को लेकर उन्होंने उसको खंडन करने का प्रयास किया। तो इसलिए चार वैष्णव आचार्य चार सिद्धांत। दूसरी बात, भगवान कृष्ण को बालम नीलमणि ऐसे कहा जाता है, नीलमणि कहा जाता है। बिल्लमंगल ठाकुर अपने कृष्ण कर्णामृत में कृष्ण को वर्णन करते हैं नीलमणि, उनका नाम है नीलमणि कृष्ण का। अगर आप मणि को लोगे, आप एक दृष्टिकोण से देखोगे तो एक दिखाई पड़ता है, कोई इधर बोल रहा है कैसा मणि वर्णन करो वो कुछ और वर्णन करता है, कोई उधर खड़ा है तो उसको बोलो मणि का वर्णन करो वो कुछ और वर्णन करेगा। मणि तो एक ही है, लेकिन एक एक व्यक्ति जिस दृष्टिकोण से मणि को देख रहा है उस दृष्टिकोण से इसका वर्णन करेगा, लेकिन उसी प्रकार जब एक कृष्ण को जब ये चार वैष्णव आचार्य उन्होंने दर्शन किए, उसी कृष्ण वो कृष्ण को अलग अलग तरीके से देखे। रामानुजाचार्य ने इस कृष्ण को नारायण के रूप में देखे, जब वही निम्बार्क आचार्य ने राधा कृष्ण समय विग्रह को देखा, तो वैसे ही इधर के जो पुष्टिमा के जो है वो बाल कृष्ण के रूप में देखा ईश्वर इस भाव में। वही मध्वाचार्य ने देखा तो उनको वही बालकृष्ण लेकिन वात्सल्युक्त दास्य ये उन्होंने देखा। तो इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये चारों वैष्णवाचार्य एक ही तत्व को दर्शन किया लेकिन अलग अलग रसों में। तो इससे क्या पता लगता है? ये चारों वैष्णवाचार्यों का तत्व एक है लेकिन भेद किसमें है? रस भेद है। तो वो रस भेद है, तत्व भेद नहीं है ये चार वैष्णवाचार्य में। तो रस भेद होने के रास्ते उनका जो भाष्य में, उनका सिद्धांत में उस रस को पोषण करने के लिए उस प्रकार का सिद्धांत को रचना करना होगा, उस प्रकार का फिलॉसफी को रचना करना होगा, तभी उस रस का पोषण होगा। तो इसलिए ये दो मुख्य कारणों की वजह से आपको ये चार वैष्णवाचार्य को भिन्न भिन्न बात दिखाई पड़ रहा है। अगर ये बात को जाने बिना हम अगर ये देखने लग जाएंगे, आपको दिखाई पड़ेगा मध्वाचार्य ये कहते हैं रामानुजाचार्य गलत है। हाँ, आपको ऐसा लगता है सही बात है, रामानुजाचार्य गलत है। अगर कोई सोचता है तो अपराध गलत नहीं है, क्योंकि चारों वैष्णवाचार्य। इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब उन्हें अपना मंदिर का निर्माण किया मायापुर में चैतन्य मठ, श्री गांधर्वी का गिरिधारी विग्रह जी को स्थापना किया, उधर चारों वैष्णवाचार्य के विग्रहों को उन्होंने स्थापना किया। अगर इन चारों में से एक भी गलत होते कि भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्यों उनको पूजा करते हैं? उनको बकायदा भोग लगता है, उनको आचार्यों का पूजा होता है, सेवा होता है, श्री भक्ति संस्था को क्यों करते? अगर किसी में गलती है तो दोष है तो हमारा महान आचार्य श्री। एक बार एक व्यक्ति भक्ति साधु के पास गए, जाके उन्होंने पूछा कि हमारा अच्छी संप्रदाय के साथ क्या संबंध है और उनसे क्या कैसे हम अलग है। तब श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने ये कहा कि रामानुज संप्रदाय श्री चैतन्य श्रीमद मंदिर भक्ति स्वरूप, श्री रामानुज संप्रदाय जो है चैतन्य महात्मा का प्रेम मंदिर का नींव है, यानी श्रीपाद रामानुजाचार्य के सिद्धांत के ऊपर आधारित होते हुए, उनकी शिक्षाओं के ऊपर आधारित होते हुए चैतन्य महात्मा ने ये जो इस्लाम नामक प्रेम मंदिर को स्थापना किया। इससे क्या पता लगता है? भक्तिनाथ ठाकुर ने उस समय रामानुजाचार्य कहाँ कहाँ उनके अंदर कमियां हैं, कौन सिद्धांत में कहाँ कमियां हैं, उसको उन्होंने नहीं बताया। उन्हें खाली क्या बताया? किस प्रकार श्रीपाद रामानुजाचार्य हमारे जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का नींव है इस बात को बताया। तो ये जो सब्जेक्ट है जिसको हम चर्चा करने वाले हैं, इसके अंदर जाने से पहले ये दो विशिष्ट बातों को जानना होगा। वाई देयर आर डिफरेंट कमेंट्री, वैष्णव इज वैष्णव, सभी वैष्णव है। श्री प्रभुपाद जी के सारे कोटेशन में मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि ऑल द डिवोटीज ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस दे शुड टेक शेल्टर ऑफ द पोर्ट ऑफ रामानुजाचार्य, द पोर्ट बिल्ड बाय रामानुजाचार्य to be saved from the designs of Maya philosophy. To take strong shelter, Prabhupada ने ये लिखा, ने कहा कि हर सदस्य को, खासकर के अंतर्राष्ट्रीय विश्वास सदस्य को क्या करना चाहिए? श्रीपाद रामानुजाचार्य के द्वारा बनाया गया वो ये जो वैष्णव सिद्धांत का जो किला है, उसको बहुत दृढ़ता के साथ उसका शरण लेना होगा। अगर लेंगे मायावाद नामक ये जो गलत सिद्धांत है उसके द्वारा हम कभी प्रभावित नहीं होंगे। तो वैसे एक स्टेटमेंट बताया, वैसे तो प्रभुपाद जी अनेकों अनेक बताते हैं। बाद में उन्होंने कहा जो व्यक्ति वेदांत को जानना चाहता है उनको ये चारों संप्रदाय के आचार्यों का वेदांत सूत्रियों पर टीका पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा, और साथ साथ में चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया जो मत है अत्यंत भेद भेद तत्व, उसको भी अच्छी तरह से समझना होगा। क्योंकि एक तरीके से बताया जाए अपने जो जीव गोस्वामी पास अपने चरण संदर्भों में, खास करके पहले की चार संदर्भों में, रामानुज मध्वनिम्बारक और विष्णु स्वामी ये चारों आचार्य का सिद्धांत का निचोड़ को समझ के, उस निचोड़ को प्रस्तुत करते हुए उसके संबंध में उन्होंने ये गौड़ीय वैश्य सिद्धांत को प्रकाशित किया। गौड़ीय वैश्य सिद्धांत अत्यंत वेद वेद तत्व है, ये वैसे ही बताए जाएंगे तो इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन चारों आचार्यों के सिद्धांत का सार निकालते हुए उसके दृष्टिकोण से अगर समझेंगे तो अत्यंत वेद वेद तत्व को समझ सकते हैं या जान सकते हैं। कहते हैं ये जो टेबल के ऊपर सब रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? क्योंकि चार पहिए हैं। अगर वो चार पहिए नहीं है उसको टेबल ही नहीं कहते। उसी प्रकार ये जो अत्यंत भेद भेद तत्व है वो टेबल का ऊपर वाला भाग है, लेकिन ये जो चार अन्य वैष्णव संप्रदाय के आचार्य का सिद्धांत है वो कहता है यही टेबल के चार पहिए के बराबर है। तो अगर ये चार पहिए को जाने तो ये ऊपर जो टेबल का ऊपर का भाग है हम अच्छी तरह से जान सकते हैं ये टेबल है करके। अगर ये चार वैष्णव संप्रदाय के आचार्य के सिद्धांत को नहीं जानेंगे तो ऊपर का भाग को देखने लगेंगे तो क्या होगा, वो कुछ दिन कुछ और है कि नहीं, उसका कुछ इतना महत्व हम नहीं दे पाएंगे। तो श्री प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को तो प्रकाशित करते हैं, साथ साथ में स्पॉन्टेनियसली वो हमारे सिद्धांत को भी स्थापना करते हैं। तो ये बड़ा गहरा विषय वस्तु है, इसलिए मैं कितना हो सकता सरल बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले यही जो टॉपिक मैं अभी तक कहा इसके ऊपर और थोड़ा गहराई में चर्चा किया जा सकता है, लेकिन अभी हमने सार रूप में चर्चा क्या की अभी तक, क्योंकि एक पूरा प्रवचन के बाद आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए क्या सुना मैंने। सबसे पहला बात ये चार वैष्णव आचार्य की आवश्यकता क्या है, टीका की आवश्यकता क्या है, इसका दो कारण है। एक है मायावाद भाष्य के अलग अलग पहलुओं को खंडन करना, दूसरा एक कृष्ण को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा गया, अलग अलग रसों से संबंध से जुड़ा, उस रस को पोषण करने की पोषण करने लायक एक सिद्धांत होना चाहिए। इसलिए आपको ये रस भेद की वजह से सिद्धांत भेद दिखाई पड़ता है। एक छोटा सा उदाहरण दो, श्री बलदेव विद्याभूषण एक ग्रंथ की रचना करते जिसका नाम है प्रमेय रत्नावली। ये मूलतः ये प्रमेय रत्नावली की रचना या प्रमेय नव प्रमेय की रचना नव प्रमेय की रचना श्रीपाद मध्वाचार्य ने किया था। श्रीपाद मध्वाचार्य ने कहा कि सारा शास्त्र में केवल नौ बातें हैं, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। तब बलदेव विद्याभूषण ने उन्हीं नौ चीजों को लिया और कहा कि मध्व प्राह, मध्वाचार्य ने इस प्रकार कहा तो हम इसको फॉलो करते हैं। लेकिन बलदेव विद्याभूषण ने क्या किया, ये नव प्रमेय को स्वीकार किया, उसका जो ऑर्डर चेंज कर दिया, उसका जो ऑर्डर चेंज किया। क्यों चेंज किया? क्योंकि मध्वाचार्य का किस के साथ संबंध जो है वो रस जो है अलग है, तो ये हमारा जो कृष्ण के साथ संबंध रस है वो अलग है। तो ये रस भेद को अकोमोडेट करने के लिए तो ये जो खाली नव प्रमेय को स्वीकार किया उसके अंदर थोड़ा चेंज कर दिया, सिक्वेंस चेंज किया। भक्तिनाथ ठाकुर ने क्या किया, उन्हीं नव प्रमेय को स्वीकार किया और थोड़ा सा एक दो चीजें बदली करके और एक चीज डाल दिया, इसका नाम है रसाभिन, इसको दशमूल कहा गया। तो ये सब चीजें थोड़ा और गहरा विषय वस्तु है, लेकिन मैंने खाली परिचय मात्र दिया किस प्रकार वैष्णवाचार्य सारे वैष्णव हैं और सारे वंदनीय हैं, लेकिन हमको इनके अंदर भेद है, ये रस भेद की वजह से सिद्धांत भेद है, मायावाद खंडन अलग अलग तरीके से अलग अलग तेलुगु किया गया, इसलिए उसके अंदर सिद्धांत भेद दिखाई पड़ता है। उसके बाद हमने चर्चा किया कि ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत जो है वो टेबल टॉप के बराबर है, और ये चार वैष्णवाचार्य के जो सिद्धांत वो चार पहिये की बराबर है। इसलिए गौड़ी वैष्णव सिद्धांत को भी अच्छा समझना होगा कि चार वैष्णव सिद्धांत को भी समझने से गौड़ी वैष्णव सिद्धांत और आस्वादनीय होगा। इसलिए ये चार वैष्णव सिद्धांतों के बारे में या रामायण सिद्धांत को जानने से पहले हम कुछ ऐसे बातों को चर्चा करते हैं कि हम सब जानते हैं कि गौड़ी वैष्णव सिद्धांत का विशिष्टता क्या है, जो अन्य चार संप्रदाय में जो प्राप्त नहीं होता है वो क्या है पहले जानेंगे। उसके बाद जो चीजें हम रामायण संप्रदाय से लिए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, बाद में कॉम्प्लिकेटेड चीज जो है लास्ट में चर्चा करेंगे। क्या है वो? जो रामायण सिद्धांत में कुछ कमियां मतलब कुछ प्रकार की कमी नहीं है जिस प्रकार हम सोचते हैं, वो भी बात बाद में चर्चा करेंगे। उनको कैसे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत पूर्ण करता है वो भी कम से जानने का प्रयास करेंगे। ये सरल बातें हमें जो कह रहा हूं, जो अन्य चार वैष्णव संप्रदाय जिनके बारे में उल्लेख नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है कि एक नर्सरी टीचर जो है वो बच्चे को क्या पढ़ाती है, ए बी तब कोई गांव से आया व्यक्ति सोचता है इतनी बड़ी होगी काली एबीसीडी जानती है, तो ये मूर्खता किसका है? एक गांव वाले का। अरे वो बच्चे को एबीसीडी सिखा रही है क्योंकि तो बच्चा उससे ज्यादा सीख नहीं सकता, इसलिए वो एबीसीडी सिखा रही है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो टीचर काली एबीसीडी है। तो इस प्रकार हमको ये मूर्खता व्यक्त नहीं करना चाहिए कि गौड़ीय वैष्णवाचार्य इन बातों को नहीं जानते। इसलिए मैं इन बात ये सब इस्तेमाल कर रहा हूं, उन्होंने इन बातों को उल्लेख नहीं किया। क्या है? सबसे पहला श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र का स्वाभाविक पाठ है। ये बात चारों वैष्णव संप्रदाय के आचार्य ने उल्लेख नहीं किया। ये कहना उचित नहीं है कि ये बात उनको स्वीकार नहीं करते। अभी के उनके अनुगामी स्वीकार नहीं करते होंगे, वो स्वीकार करे ना करे उससे हमको अर्थ मतलब नहीं, लेकिन ये बातें उसके उल्लेख नहीं है। दूसरा कृष्णस्तु भगवान स्वयं जो हमारा गौड़ीय वैष्णव का नारा है वो उधर कम सुनाई पड़ता है। ये नहीं बोल रहा हूं उधर सुनाई नहीं पड़ता, कम सुनाई पड़ता है। दूसरा तीसरा भगवान की तीन प्रकार की शक्तियां अंतरंगा बहिरंगा तटस्था, इसके बारे में बाद विस्तार चर्चा करेंगे। स्पष्ट रूप में जो हमारा सिद्धांत है भगवान की तीन शक्तियां हैं, विश्व शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र के तापरा अविद्या कर्म संज्ञा तृतीया जस्त्री सदे, इस श्लोक से प्राप्त ये जो चीजें हैं ये उधर स्पष्ट रूप में कोई वही समाचार में इसके बारे में नहीं कहा। चौथा तो भगवान और जीव के बीच में संबंध के बारे में ये जो अचिंत्य भेद अभेद तत्व है उसका उल्लेख करके सारा इस समाचार ने व्यक्त रूप में नहीं किया। बाद में भक्ति जो है मुक्ति से परे है ये बात स्पष्ट रूप में चार वैष्णवाचार्य नहीं कहा। बाद में शरणागति जो है भक्ति से अलग कोई अंग नहीं है, बल्कि भक्ति के प्रत्येक अंग में पाया गया वस्तु है शरणागति। सातवां प्रेम जो है वो परम पुरुषार्थ है, भक्ति का सर्वोच्च स्तर है प्रेम। वर्ण और आश्रम और वैष्णव इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का मिलित अवतार है, मिलित स्वरूप है, ये जो हम स्वीकार करते हैं बाकी वही समाचार उसको लेकर नहीं किए। और राग भक्ति विधि भक्ति से श्रेष्ठ है, जिनके द्वारा भगवान राधा कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो पांच प्रकार का जो मुक्ति शास्त्र वर्णन किया गया है, भक्त इन मुक्ति को नहीं चाहता है। और भगवान के साथ पांच प्रकार का रस है, मुख्य सात प्रकार के गौण रस है। अनेकों अनेकों भगवान के अवतार जो असुरों को वध करते हैं, उन असुर का मुक्ति नहीं होता है। जब कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं, जब कृष्ण के हाथों में असुर का मृत्यु होता है, तभी उस असुर का मुक्ति होता है। विरह जो है संयोग से श्रेष्ठ है। अंततः जो परकीय रस है गोपियों का कृष्ण के साथ, ये जो परकीय रस है इससे बढ़कर कोई और रस नहीं है। ये जो 15 बातें हैं हमको गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत का विशिष्टता है। तो ये 15 बातों को एक्सप्लेन करने जा रही है, एक बातों को एक ही क्लास में कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने एक ही क्लास किया, जैसे संस्कृत में कहा गया है, ऐसी 15 बातें हैं जो आपको केवल चैतन्य महाप्रभु के धारा में ही सुनाई पड़ता है। आप कोई अन्य धारा में जाओगे ये बात आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। इन बातों कह देंगे लेकिन उसके ऊपर एम्फसाइज नहीं करेंगे, इसके ऊपर इतना गहराई से नहीं, कृष्ण ही भगवान है, ये बात जो है आपको ऐसा स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं पड़ेगा। या मोक्ष जो है वो गौण है, भक्ति श्रेष्ठ है, ये इतना स्पष्ट रूप में सुनने को नहीं मिलेगा। चलिए अभी जब भी कोई भी बात आता है सिद्धांत का अर्थ फिलॉसफी, उसका तीन भाग होता है। एक होता है संबंध, दूसरा है अभिधेय, तीसरा है प्रयोजन। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, थियोलॉजी, एक्सियोलॉजी और मेटाफिजिक्स। तो हम वापस आते हैं, सबसे पहला है संबंध। संबंध अभिधेय प्रयोजन, सारे शास्त्र में ये तीन बातें कहा गया है। ये बात स्पष्ट रूप से चैतन्य महाप्रभु ने कहा और अन्य आचार्यों ने यही बातों के ऊपर आधारित होकर अपनी भाषण रचना किए, लेकिन एकदम स्पष्ट नहीं है। इसलिए अस्पष्ट चीज को स्पष्ट चीज के द्वारा ही समझा जा सकता है। इसलिए रामायण सिद्धांत को हम अभी उनके कुछ बातों को हम गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के चश्मा पहन के देखेंगे। सबसे पहला संबंध ज्ञान। तो रामायण सिद्धांत के अंदर संबंध ज्ञान क्या है, संबंध ज्ञान के अंतर्गत संबंध ज्ञान का अर्थ क्या है, संबंध ज्ञान का अर्थ है कि संबंध क्या है। अंततः कुछ भी खोज कीजिए उसके अंदर तीन तत्व है शास्त्र में, परमात्मा यानी भगवान ईश्वर, दूसरा जीव, तीसरा जड़। इसलिए आप भगवद्गीता का दूसरा अध्याय का 11वां श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि नॉलेज मीन्स अंडरस्टैंडिंग मैटर स्पिरिट एंड कंट्रोलर ईश्वर, यानी भगवान कौन है, जीव क्या है और जड़ वस्तु क्या है, और इन तीनों में संबंध क्या है, इन तीनों में अंतर क्या है, ये जानना ही फिलॉसफी है, संबंध ज्ञान है। तो संबंध ज्ञान रामायण सिद्धांत के अनुसार थोड़ा बहुत प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। ये संबंध ज्ञान की वजह से ही रामायण सिद्धांत में उसका नाम बड़ा विशिष्ट शास्त्र है। ये चार आचार्य, चार संप्रदाय, चार आचार्यों का सिद्धांत का नाम ये जानना होगा। ब्रह्म रुद्र श्री कुमार चार संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य कौन है? मध्वाचार्य। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी। निम्बार्क आचार्य कौन के किसके है? कुमार संप्रदाय के। और श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य। और ये जो ब्रह्म संप्रदाय के जो मध्वाचार्य है उनका सिद्धांत का नाम क्या है? द्वैत सिद्धांत है। और निम्बार्क आचार्य जो कुमार संप्रदाय के उनका द्वैत अद्वैत है। और ये जो विष्णु स्वामी संप्रदाय के जो यानी रुद्र संप्रदाय के सिद्धांत है शुद्ध अद्वैत है। और रामानुज संप्रदाय यानी शिव संप्रदाय के सिद्धांत का नाम है विशिष्ट अद्वैत। तो नाम क्या पड़े? द्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत। तो नाम सुनते ऐसा लगता है क्या है सर? और हमारा क्या है? अचिंत्य भेद अभेद तत्व। चलिए भले तो थोड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी कम से कम जानने को तो हो रहा है कि चार संप्रदाय चार आचार्य का सिद्धांत। चलिए अभी विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत का नाम विशिष्टाद्वैत क्यों पड़ा? वाइट इज कॉल्ड विशिष्ट। विशिष्ट का शब्द जो है विशिष्ट वैशिष्ट स्पेशलिटी क्वालिफाइड मोनोइज्म। क्वालिफाइड करते हैं कोई चीज का विशेषता जब स्वीकार किया जाता है उसको विशिष्ट कहा जाता है। क्या हिंदू से शब्दों में एक सरल उदाहरण दो, मैं एक वस्तु आपको दिखाऊंगा इसके अंदर क्या है? जल है। ये क्या है? ठीक है, सिस्टर को कहते हैं इसके अंदर जल है, ये माइक्रोफोन है। आप इसको जल क्यों कहे, इसको माइक्रोफोन क्यों कहे? इन दोनों के बीच में जो अंतर है तो अंतर किसके ऊपर आधारित होते हुए कहा है आपने? हाँ, उसकी विशेषता के ऊपर आधारित होते। यानी इस जगत में कोई वस्तु का पहचान उसके विशेषता के ऊपर आधारित होकर होता है। दूसरा, एक वस्तु और दूसरे वस्तु के बीच में जो अंतर है या संबंध है वो भी किसके ऊपर आधारित होकर होता है? उसके विशेषता यानी उसके गुणों के ऊपर आधारित होकर होता है। माइक्रोफोन आवाज को बड़ा करता है, पानी जो है बहता है, माइक्रोफोन बहता नहीं है, इसलिए आपने इसको पानी नहीं कहा। आपने इसको माइक्रोफोन क्यों नहीं कहा? क्योंकि बहता है। लेकिन इससे और सरल नहीं जा सकता हूं तो इसको विशेषता कहा जाता है, जिसका स्पेशलिटी। तो वैसे ही श्रीपाद रामानुजाचार्य के सिद्धांत विशिष्टता द्वैत मुख्य तरीके से इसलिए कहा जाता है क्योंकि श्रीपाद रामानुजाचार्य ने जीव और जड़ वस्तु यानी भौतिक जगत यानी चित्त और अचित्त को ब्रह्म का यानी ईश्वर का विशेषता के रूप में स्वीकार किया है। He has accepted the living entities and the material world, material nature as the qualities of Krishna. इसलिए उनका सिद्धांत का नाम क्या पड़ा? विशिष्टाद्वैत। ये सबसे पहला पॉइंट है रामायण सिद्धांत के अनुसार। क्या है ये? विशिष्ट अद्वैत। अंततः वो अद्वैत है लेकिन उसके अंदर विशिष्टता। अद्वैत है लेकिन क्या है? विशिष्टता। अद्वैत का अर्थ क्या है? एक ही परम सत्य है, परम सत्य दो नहीं है, परम सत्य एक ही है लेकिन उस परम सत्य एक परम सत्य का विशिष्टता है, उनका क्वालिटीज है। वैसे उनके जो सिद्धांत का सार है अनंत गुण संपन्न नारायण गुण संपन्न। अभी रामानुजाचार्य कौन है? अनंत देव है। हम इसलिए क्या करते हैं, भगवान गुणगान करते हैं, इसलिए खारे भगवान और गुण ये दो चीज देखते हैं उनका आरोप हो गया। इसलिए भगवान ईश्वर के ये जो दो है चित्त और अचित्त आर द क्वालिटीज ऑफ, ये पहला पॉइंट। इसने उनका नाम क्या पड़ा, विशिष्टाश्रय। बाद में दूसरा बात, जैसे हमारा शरीर है, हमारा शरीर का अस्तित्व क्यों है, आत्मा की वजह। तो आत्मा अगर शरीर से निकल जाता है, शरीर से उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जब हम कोई किसी व्यक्ति को देखते हैं, क्या देखते हैं, शरीर को ही देखते हैं, है कि नहीं। और शरीर आत्मा एक ही चीज, एक ही रूप में दिखाई पड़ता। वैसे ही परम ब्रह्म यानी ईश्वर चित्त अचित ईश्वर तीनों एक ही वस्तु है, इससे अद्वैत है। लेकिन एक ही वस्तु के अंतर्गत क्या है, विशेषता। क्या विशेषता है, जिस प्रकार आत्मा शरीर को धारण करता है और इस शरीर को पोषण करता है, इस शरीर का आधार बनता है, उसी प्रकार भगवान जो है इस चित्त और अचित का आश्रय है। इसलिए आधार आधेय, भगवान कौन है, आधार है। और ये जड़ वस्तु और ये जो चित्त है, चित्तकण है, जीव है, ये कौन है, आधेय है। शरीर शरीरी, शरीर शरीरी भेद, उस हिसाब से वो भेद नहीं है शरीर शरीरी में, क्योंकि एक ही यूनिट है, उसलिए वो अद्वैत है। लेकिन साथ साथ में वो कैसा है, आधार आधेय। तो इसलिए अद्वैत होने पर भी उसके अंतर्गत भी क्या है, आधार आधेय। वैसे तीन बातों को कहते हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य टीचिंग, कि जीव और जड़ वस्तु ये दोनों भगवान के साथ उनका क्या संबंध है, आधार आधेय। टेक्निकल टर्म हो गया, ठीक है, यानी वो बाद में चर्चा करते। तो इस बात को सबसे पहले जानना होगा कि भगवान और इस जीव के बीच संबंध कैसा है, भगवान के दोनों गुण है। और तीसरा क्या, दूसरा क्या है, ये आत्मा जिस प्रकार का शरीर का आधार है, उसी प्रकार ये जो भौतिक जगत और निश्चित वस्तु कारण का आधार कौन है, भगवान है, शरीर 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 भेद। तो तब किसी ने प्रश्न उठाया कि ऐसा कैसे आप कह सकते हो कि भगवान का ये दोनों गुण है, कौन ये चित्त और अचित दोनों गुण है, और चित्त और अचित एक हो गया, लेकिन हमको दिखाई पड़ रहा है इन दोनों में भेद है। तब रामानुजाचार्य ने कहा कि अप्राकृत सिद्धि, हम लोग जो अचिंत्य शब्द इस्तेमाल करते हैं, उस अचिंत्य शब्द को ही रामानुजाचार्य ने अचिंत्य इस्तेमाल किए बिना उन्होंने अप्राकृत सिद्धि करके उन्हें वर्णन किया। तो इस तरीके से गौड़ी वैष्णवाचार्य खासकर की जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, श्रीपाद रामानुजाचार्य भी अचिंत्य भेद अभेद तत्व को प्रकाशित किया, लेकिन स्पष्ट रूप में नहीं। जैसे श्रीपाद मध्वाचार्य भी अचिंत्य भेद अभेद तत्व को उन्होंने प्रकाश किया था, लेकिन स्पष्ट रूप में नहीं। इसका मूल रूप में जाएंगे, ये चारों वैष्णवाचार्य अपने भाष्य का रचना चैतन्य महाप्रभु से मुलाकात करने के बाद ही किया था। तो ये चारों वैष्णवाचार्य ने कहा था महाप्रभु को, बस अभी आपका सिद्धांत हम प्रकाशित करेंगे। महाप्रभु ने स्वयं इन चारों को कहा था, अभी जो है आप क्या करो, मेरा जो रहस्य है अभी उसका भी प्रकाशित मत करो, उसके लिए समय है। मैं आपको कुछ ऐसी बातें दूंगा उन बातों के ऊपर आधारित होकर अपने भाग्य की रचना करो। अब जी टॉप मोस्ट सीक्रेट जो है मेरे आने के बाद ही प्रकट करना। लेकिन एक गौड़ी वैष्णवाचार्य कहते हैं श्रीपाद मध्वाचार्य को आश्रम के रहा नहीं गया, भले उन्होंने द्वैत सिद्धांत को स्थापना की अपनी भाष्य में, लेकिन कहीं ना कहीं इधर उधर अलग अलग जगह या चिंत्य भेद अभेद तत्व जो सारे शास्त्रों का निचोड़ है उन्होंने प्रकाशित किया था। उसी प्रकार श्रीपाद रामानुजाचार्य ने ये जो अप्राकृत सिद्धि ये बात को वर्णन करते हुए उन्होंने अचिंत्य भेद अभेद तत्व को प्रकाशित किया। तो अप्राकृत सिद्धि का अर्थ क्या है? ये अप्राकृत है, हम उसके बारे में सोच नहीं सकते। ये अप्राकृत वस्तु का सिद्धि है, क्योंकि भगवान अप्राकृत इस भौतिक जगत से परे है। वो भले ही इनको शरीर के रूप में धारण करेंगे, यानी कि जड़ वस्तु कणों को उनको अपने शरीर के रूप में धारण करेंगे, फिर भी उनसे अलग रहते हैं। तो क्या हो गया? ये भी अचिंत्य भेद तत्व हो गया, लेकिन उसको स्पष्ट रूप में उन्होंने कहा नहीं कहा। ये दो बातें के साथ हमें संबंध ज्ञान को थोड़ा सा संबंध ज्ञान को थोड़ा मैं चर्चा किया। वैसे बहुत सारे बातें हैं। अभी भगवान और इस जड़ वस्तु के जो संबंध, जड़ जगत के जो संबंध, उसको चर्चा करते हैं। ये भी संबंध ज्ञान के अंतर्गत आता है। हमारा जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार भगवान और जितने भी चीजें दिखाई पड़ रहा है, जितने तत्व दिखाई पड़ रहा है भगवान के अलावा, वो सब भगवान की शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। यानी ये जड़ वस्तु और चित्रण ये दोनों कौन है? भगवान की शक्तियां हैं। और इन दोनों के संबंध भी कैसा है? अचिंत्य है। अचिंत्य शब्द कहां से आया? महाभारत में एक श्लोक से आया, अचिंत्य करुणा तारकायन से योग जैसे विश्वदेव कहते विश्व में बात आता है। ये जो सिद्धांत है, खास करके भगवान भौतिक जगत और जीव के जो संबंध है, ये अचिंत्य है और तर्क के द्वारा तो स्थापना नहीं किया जा सकता। श्रीपाद रामानुजाचार्य के सिद्धांत में ये अप्राकृत सिद्धि को लाके थोड़ा सा तर्क को ज्यादा वजन दिया। तो तर्क को ज्यादा वजन देके इस तर्क के द्वारा अप्राकृत सिद्धि को स्थापना करने के, अपने सिद्धांत को स्थापना करने के प्रयास किए। तो ये जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि एकदम कट्टर मायावादी उस समय उनको एकदम तर्क के ऊपर ज्यादा वो जोर देते हैं। तर्क के द्वारा ही हम आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेंगे, ऐसा उनका विचार रहता है। उनके सामने अचिंत्य की बात कहेंगे तो हंसेंगे। इसलिए ये जो मूल सिद्धांत अचिंत्य गये तत्व, उसको रामानुजाचार्य ने उस समय इन लोगों को स्पष्ट रूप प्रकाशित नहीं किया। अपने संस्कृत भाषा का विद्वत्ता के द्वारा ऐसे तर्क का गहराई से जाते हैं ये स्थापना करने के लिए कि भगवान की विशेषताएं हैं, वो निर्विशेष नहीं। तो इस हिसाब से श्रीपाद रामानुजाचार्य सात बातों को प्रस्तुत करते हैं। वो उसकी गहराई में नहीं जाएंगे, ये स्थापना करते हैं भगवान के गुण हैं, भगवान निर्गुण नहीं है, उनके बहुत सुंदर ऐश्वर्य है, बहुत सुंदर गुण है, उनका सुंदरता है, उनका विशेषताएं हैं। तो आगे सुनते हैं कि जगत और भौतिक जगत और ये भगवान की जो विषय संबंध क्या है, कैसे सृष्टि करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। संक्षिप्त में कहना चाहता हूं कि साधारणता दो प्रकार का है, लेकिन अनेकों प्रकार के इससे बहुत प्रकार के इसी के ऊपर आधारित होते बहुत सारे सिद्धांत है सृष्टि के विषय में। यानी कारण हेतु कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, एक है सत्कार्यवाद, दूसरा है असत्कार्यवाद। न्याय के सिद्धांत जो है वो असत्कार्यवाद को स्वीकार करता है। यानी जब कोई कारण से हेतु प्रकट होता है वो हेतु के लक्षण कारण में नहीं होता है। और कुछ का कहना है जब कोई कारण से हेतु प्रकट होता है वो कारण जो है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उदाहरण देते हैं एक बीज, आप बीज डालो उससे पेड़ उत्पन्न होता है, वो पेड़ प्रकट होने का बीज दिखाई पड़ता है, यानी बीज कारण है वृक्ष हेतु है, तो क्या हुआ जैसे हेतु प्रकट हुआ कारण गायब हो गया। ये बौद्ध दर्शन है, वो कहते हैं भगवान से जगत प्रकट हो गया तो क्या हुआ भगवान गायब हो गए। तो ऐसे चेहरे को सिद्धांत, तो इसका मूल क्या है असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद का एक उदाहरण होता हूं, कुत्ता भोंकता है क्या उदाहरण, तो कुत्ते से क्या निकल रहा है आवाज निकल रहा है, क्या इस कार से क्या कुत्ता आवाज से बना है, यानी द कार इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द इफेक्ट, द इफेक्ट इज नॉट फाउंड इन द कार। इसको क्या कहा जाता है असत्कार्यवाद। और एक प्रकार का आवाज है जिसको सत्कार्यवाद कहा जाता है, इसके अनुसार क्या है कि मैं वही वस्तु को सृष्टि कर सकता हूं जो सृष्टि किया गया वस्तु मेरे अंदर हो, यानी जो हेतु है जो कारण है, हेतु जो है कारण में होना चाहिए, संक्षिप्त रूप में होना चाहिए, सूक्ष्म रूप में होना चाहिए, तभी ये सब प्रकट होगा, तभी ये उदाहरण किया जाएगा। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य का ये जो सिद्धांत है वो भी सत्कार्यवाद के अंतर्गत आता है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, वो थोड़ा सा परिवर्तन किया, ने कहा ये जो जगत है वो भगवान से प्रकट हुआ है, ये सही बात है, लेकिन कैसे प्रकट हुआ है, अगर ब्रह्म से जगत प्रकट हुआ है तो ब्रह्म में परिवर्तन हो गया, लेकिन वेदांत में कहा गया, वेदों में कहा गया, वेदांत में कहा गया ब्रह्म परिवर्तन नहीं होता है, ब्रह्म इज नॉट ट्रांसफॉर्म। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन तेरी आपने इसे कैसे लगा दिया, श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं ये जो है ये असत्कार्यवाद जो है ये सही है, लेकिन ये अचिंत्य या अप्रकृत सिद्धि होने की वजह से, भगवान के पास अनंत गुण होने की वजह से ये जगत जो है वो इस प्रकार प्रकाशित करना उनका बड़ा गुण है। तो बहुत सारे जो अन्य दार्शनिक है वो कहते हैं रामानुजाचार्य जो है इस जगत कैसे सृष्टि हुआ इसका वर्णन करने में थोड़ा सा वो असमर्थ है, ऐसा कहते हैं। लेकिन गौड़ीय वैष्णवाचार्य कहते हैं उस समय के अनुसार रामानुजाचार्य जो है भगवान की शक्ति का परिणामवाद उसको प्रकाशित नहीं किया, क्योंकि सबसे पहला श्रीपाद रामानुजाचार्य ने भगवान और शक्तियों को स्वीकार नहीं किया था, अनंत शक्तियों को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार क्या है ये जो जगत का निर्माण हुआ है वो भी सत्कार्यवाद के वजह से हुआ, लेकिन कैसे उनका परिवर्तन हुआ, किसका परिवर्तन हुआ शक्तियों का परिवर्तन हुआ। इसलिए हमारा कौन सा सिद्धांत है शक्ति परिणाम हुआ, यदि शक्ति परिणाम हुआ तो ये एक प्रकार का एक टॉपिक है। वैसे ये भगवान और जीव के बीच में संबंध, भगवान और जीव के बीच में संबंध के बारे में श्रीपाद रामानुजाचार्य ये कहते हैं कि ये जो जीव है भगवान की गुण है, इट इज समझ एस्पेक्ट, वो गुण होने के नाते वो भिन्न है, लेकिन साथ साथ में उनके अंदर ऐसा ज्ञान है जीव में जिसके द्वारा भगवान का समतुल्य हो सकता है। लेकिन तीन ज्ञान, तीन प्रकार के ज्ञान भगवान उस युग में देते हैं, चाहे वो सृष्टि स्थिति प्रलय, जीव के पास ऐसा सामर्थ्य है, वो उनके पास ज्ञानमय है और साथ साथ में सारा ज्ञान को प्राप्त करने का सामर्थ्य उनके अंदर है। क्योंकि अद्वैत अंत कहा, विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत है लेकिन विशिष्ट प्रकार का अद्वैत है। इसलिए श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं, श्रीपाद रामायण या भाष्य के पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जीवेश्वरवाद को तोड़ना चाहिए उस प्रकार रामाचार्य नहीं किया। अभी भी उनका उनके भाष्य में अद्वैतवाद का लक्षण दिखाई पड़ता है। क्योंकि रामाचार्य का मुख्य तरीके से क्या सेवा था, अद्वैतवाद का जो निर्विशेषवाद है उसको खंडन करना, ये जीवेश्वरवाद को खंडन करना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था। तो इसलिए श्रीपाद मध्वाचार्य जो है वो कहते हैं कि भले ही रामानुचार्य ने विष्णु को स्वीकार किया, भक्ति को स्थापना किया, फिर भी वो मायावाद है। क्योंकि भी जीवेश्वरवाद को उन्होंने जीव और ईश्वर दोनों अलग है करके स्थापना नहीं किया। तो ठीक है, अभी हम थोड़ा सा अभी संबंध का थोड़ा परिचय दिया हमारे, संबंध के अंदर संबंध ज्ञान में बहुत सारा बातें हैं, बाद में अभी बाद में अभिधेय, अभिधेय में क्या है श्रीपाद रामानुज आचार्य, अभिधेय करते स्वस्थ करते हम कैसे भगवान को प्राप्त गोल को प्राप्त करेंगे। श्रीपाद रामानुज आचार्य सिद्धांत के अनुसार जो प्रोसेस है वो क्या है, प्रपत्ति, भक्ति और प्रपत्ति, ये दोनों के बीच में अंतर है। श्रीपाद रामानुजाचार्य के अनुसार भक्ति जो है बहुत मुश्किल है कलयुग के जीवों के लिए, और इसलिए प्रपत्ति को स्वीकार करें। प्रपत्ति का अर्थ है शरणागति। श्रीपाद रामानुजाचार्य सिद्धांत के अनुसार शरणागति भक्ति से परे, भक्ति का अंग के रूप में स्वीकार नहीं करते। केवल आप भगवान का शरण लो, संपूर्ण तरीके से भगवान के ऊपर शरण आधारित हो जाओ, शरण ले लो, तब आपको क्या होगा, ये शरण लेने की वजह से आप अपना गोल प्राप्त करेंगे, अपना जो गंतव्य है वो प्राप्त, गंतव्य क्या बात बताएंगे। तो ये जो शरण लेने की विधि क्या है, तब श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं कि भगवान के पांच प्रकार के विग्रह है, परा, व्यूहा, अंतर्यामी, पुरुषा और विग्रह। आप एक विग्रह को चुनो, भगवान के ऐसे विग्रह को चुन के एक गुरु का, गुरु के शरण लेते हुए आप दीक्षा ग्रहण करो, पंच संस्कार ग्रहण करो और विग्रह के ऊपर आधारित ये सरेंडर तपस्वि, तो ये इनका सिद्धांत। आप श्रवण कीर्तन स्मरण निधिध्यासन ये सब चीजें जो है वो कुछ ही जीवों के लिए संभव है, प्रपत्ति जो है वो हर व्यक्ति कर सकता है, ये उनका फिलॉसफी। तो श्रीपाद रामानुज आचार्य सिद्धांत के अनुसार आप श्रवण कीर्तन जो है एक अंग है, वो मुख्य भाग नहीं। मुख्य भाग क्या है, शरणागति। इसलिए एक गद्य का रचना की जिसके नाम है शरणागति गद्यम, उसके पर आधारित होते हुए बहुत सारे गौड़ी वैष्णवाचार्य ने भजन लिखे। श्रीपाद यमुनाचार्य का एक ग्रंथ है स्तोत्र रचना, इसके अंदर ये प्रपत्ति का वर्णन किया गया है। और ये जो प्रपत्ति का भाव है बच्चों ठाकुर अपने भजन में लिखते हैं। बच्चों ठाकुर का एक भजन है जिसका नाम है यमुना भावावली। ये यमुनाचार्य का स्तोत्र रत्न के जो भावों को उन भजनों में उन्होंने लिपिबद्ध किया है, जिससे पता लगता है कि ये प्रपत्ति को कितना सुंदर तरीके से रामायण संप्रदाय प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन गौड़ी वैष्णव आचार्य के अनुसार, गौड़ी वैष्णव सिद्धांत के अनुसार ये जो विधि है, प्रोसेस है, वो थोड़ा सा अलग है. क्या है? श्रवण कीर्तन ये मेन है. शरणागति जो है भक्ति का प्रत्येक अंग का अंग है. यानी शरणागति के बिना आप भक्ति के कोई भी भाव को करो, कोई भी कार्य करो, उस भक्ति का वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता है. इसलिए क्या कहा गया है? श्रवणम कीर्तनम निश्चित प्रणम भवन साक्षिम आपने जन्म इति विष्णु भक्ति से नवलक्षण भगवत यथा भगवत यथा. तो ये सब के पर श्री जी गोस्वामी पास कमेंट देते हुए कहते हैं शरणागति भक्ति के अंदर से अलग नहीं. शरणागति के भाव से ये भक्ति कार्य करना चाहिए. ये प्रोसेस में दोनों में अंतर है, बहुत कुछ अंतर है. तो और एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो अभिधेय को करने के लिए यानी ये प्रोसेस फॉलो करने के लिए श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं कर्म और ज्ञान ये दोनों आवश्यक है. जो व्यक्ति बहुत तीर्थ यात्रा किया है, धाम सेवा किया है और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया है, वो व्यक्ति को हृदय भक्ति प्रकट होता है और वो व्यक्ति जो है प्रपत्ति कर सकता है. लेकिन हमारे गौड़ी वैश्य सिद्धांत में कर्म और ज्ञान को लात मार के भगा दिया. इसलिए क्या कहा गया है? ज्ञान कर्म नावृतम. तो ज्ञान और कर्म को कुछ योग्यता के रूप में स्वीकार किया रामानंद जैसे. भले ही ज्ञान कर्म से रहित भक्ति को स्थापना किया, लेकिन थोड़ा सा प्री क्वालिफिकेशन रूप में ज्ञान कर्म को देखा गया है, तभी प्रयोजन के हो जाते. प्रयोजन क्या है? व्हाट इज द प्रयोजन? आशीर्वाद रामानंद संप्रदाय प्रयोजन ये है भगवान का 24 घंटा स्मरण, ये प्रयोजन है. लेकिन गौड़ी में से प्रयोजन क्या है? प्रेम, विशिष्ट प्रेम, ये प्रयोजन है. ये कुछ सूक्ष्म अंतर हमको इसमें दिखाई पड़ता है. तो ये रामानुज सिद्धांत का हमने थोड़ा सा परिचय दिया कि संबंध क्या है, अभिधेय क्या है और प्रयोजन क्या है. मूलतः श्रीपाद रामानुज सिद्धांत भले इन बातों को थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा अंतर है करके, ये मालूम होना चाहिए कि श्रीपाद रामानुज सिद्धांत का जो आधार है उनके दो ग्रंथ हैं, दो प्रकार के वेद हैं. हम तो एक ही वेद को स्वीकार करते व्यास देव के व्यवस्थित वेद, लेकिन और एक वेद है जिसका नाम है दिव्य प्रबंधन, नालाय दिव्य प्रबंधन. नालाय का अर्थ है कि 4000 दिव्य प्रबंध है जो आड़वाओं के द्वारा रचित है. 12 आड़वार प्रकट हुए कलयुग के द्वापर युग के अंत से लेके कलयुग के अभी तक. भगवान के चंद्र चक्र गदा पद्म और कौस्तुभ मणि वैजयंती माला, भगवान का जो गदा और भगवान का सारंग त्रिवंग आड़वार उनके सारंग के अवतार है, कौस्तुभ मणि कुलशेखर आड़वार के आड़वार रूप में आए. ये सब आके अनेकों अनेकों दान किए. कहाँ दान किए? भगवान का दिव्य स्तुतियां किए. कहाँ? 108 दिव्य देश में. ये सबका जो संग्रह करके एक ग्रंथ बना है जिसका नाम है नारायण दिव्य प्रबंधन, और ये तमिल भाषा में अधिकांश, और कुछ लिपियां जो है मणिप्रवाणम एक अलग भाषा है जो संस्कृत तमिल जिसका तमिल है लेकिन थोड़ा संस्कृत की ज्यादा करते हैं, संस्कृत जैसा दिखाई पड़ता है, तो मणिप्रवाणम कहते हैं. उसके अंदर बहुत सारा गीत है. ये दिव्य प्रबंधन इन सब चीजों से बना हुआ है. तो ये दिव्य प्रबंधन में एक प्रबंध है जहां वर्णन किया गया है ऐसा एक समय आएगा ये जहां जब ये पृथ्वी जो है वैष्णव की चरण धूलि के द्वारा अपने आप को पवित्र मानेगी, और ये वैष्णव क्या करेंगे? सारा जगत में दोनों हाथ उठा के हरि कीर्तन करते हुए ऐसा नृत्य करेंगे कि उनका जो पैर है, चरण है, उनके सर तक उठाएंगे और कीर्तन करेंगे। और पृथ्वी भर में ऐसी वैष्णव की संख्या बढ़ जाएगी कि हर जगह यही लोग दिखाई पड़ेंगे। तो उनका एक भविष्यवाणी है, इससे पता लगता है कि कितना सुंदर सुंदर बातों की तरफ आ गया। भले दिव्य प्रबंध में हमको ज्यादा वात्सल्य की बातें दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ता है, लेकिन बहुत माधुरी बातें भी हैं, मधुर रस को, माधुर रस को पोषण करने वाली बातें भी हैं। कृष्ण और गोपियों के बीच में लीलाओं का वर्णन है। वैसे एक आलवार पतक हुई भूदेवी का यह अवतार है, वह अंडाल। अंडाल अपने एक ऐसे तो बहुत सारे जीवन में बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन 30 श्लोकों को रचना किया जिसको तिरुपावय कहा जाता है। उसके अंदर भी माधुर रस का वर्णन करती है, जिसके अंदर अंडाल क्या करते सब घर में जाके बोलती है सारे स्त्रियों को, क्या रखा है इस पति के साथ तुम्हारा, इनको छोड़ो, हमारे वास्तविक पति कौन है, कृष्ण है, चलो उनके पास, अरे हम जाके मिलके उनसे उत्सव मनाएंगे, चलो हम उनसे विवाह करेंगे, ऐसी ऐसी बातें हमको दिखाई पड़ता है। परक के रस भी दिखाई पड़ता है, ये खास करके कहा दिव्य प्रबंधों में। लेकिन ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, जब चैतन्य महाप्रभु गए दक्षिण भारत में 4 महीना रुके थे, कहा श्रीरंगम में वेंकट भट्ट के घर में, तब वेंकट भट्ट के साथ उनका संवाद हुआ। वेंकट भट्ट के संवाद में तब चैतन्य महाप्रभु हंसी मजाक में वेंकट से स्पष्ट पूछे, ये मेरा एक प्रश्न है, आप जिस लक्ष्मी को पूजा करते हो वो नारायण को छोड़ के कृष्ण के पास क्यों आती है? वेंकट भट्ट ने कहा, आप तो स्वयं भगवान है, आप सब जानते हो नारायण और कृष्ण में अंतर क्या है, दोनों तो एक ही है। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने पतिव्रत धर्म को छोड़ दिया है लक्ष्मी जी ने। नहीं ये कैसे है, फिर आप किसका सेवा करो फिर? तब बहुत सारा संवाद हुआ, बहुत सुंदर संवाद हुआ, जिसने वेंकट भट्ट हार गए इतने महापुरुष से, और बोले कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा ऐसा कृष्ण जो है उनकी सुंदरता पार है, उनके अंदर ऐसा 4 गुण है जो नारायण के पास नहीं है। तो इसको स्वीकार किए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप चिंता मत करो, आप अपना भक्ति करो नारायण का, आप उनके आपके पुत्र को मैं ले लूंगा। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को उनको अपना उच्चिष्ट 4 महीने तक रोज दिए, और रोज उनका चरण का सेवा करने को मिल रहा था। तो तब वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल भट्ट को अपना लिया, अपने संप्रदाय में ले लिया। लेकिन जो रंगनाथ जी का जो विग्रह है, उनको नारायण के रूप में सेवा करते हैं, दास के रूप में सेवा करते हैं, लेकिन उधर का एक बात पुजारी के साथ में संवाद करते मैंने पूछा कि नारायण का 4 हाथ है, आपके जो रंगनाथ जी, रंगनाथ जी के 2 हाथ क्यों है? तो रंगनाथ जी सोए हुए हैं, सोए हुए तो कौन है, कौन सोते हैं? सर्वराज्य विष्णु, चारोराज्य विष्णु, महाविष्णु ही सोते हैं, लेकिन सोए हुए हैं उनके 2 हाथ है, तो ये क्या है? तब उधर के पुजारी ने मुझे कहा, ये जो विग्रह है ये वासुदेव, यानी कि वासुदेव के 4 हाथ होते हैं, कभी 2 भी होते हैं, कभी 4 भी होते हैं, और सोते हैं, ये भी कैसे? तब उन्होंने कहा, ये जो वासुदेव है कौन है? सूक्ष्म वासुदेव। ये सूक्ष्म वासुदेव वैसे तो भगवान सूक्ष्म है ही, दिव्य है, 3 तीनों गुणों से परे हैं, शुद्ध सत्व में है। सूक्ष्म वासुदेव, सूक्ष्म वासुदेव का अर्थ क्या है? वो वासुदेव जो वृंदावन में निवास करते हैं उनको सूक्ष्म वासुदेव कहा जाता है, पंचरात्रि ग्रंथ के अनुसार। ऐसे वासुदेव कहाँ है? मथुरा और द्वारका में। क्या चतुर्युग के वासुदेव जो है वैकुंठ में निवास करते हैं? द्वारपाल के रूप में या दिक्पालकों के रूप में द्वारका में प्रथम चतुर्युग के वासुदेव है। कृष्ण स्वयं वासुदेव के रूप में मथुरा और द्वारका में है। लेकिन सूक्ष्म वासुदेव कौन है? इनका वर्णन संस्कृत में हुआ है कि वो कृष्ण जो गाय चरने के लिए जाते हैं और गोपियों के साथ मिला करते हैं। अभी क्या कर रहे हैं उधर श्रीरंगम में? किसके लिए है? ऐसे आराम कर रहे हैं क्योंकि वो आराम करना क्या है? भोग, भोग मिला। क्योंकि कावेरी जी का बहुत प्रार्थना थी, हे भगवान मेरे आप नदी के तट पे प्रकट हो जाइए और मेरे साथ लीलाएं किए जिस प्रकार आपने गोपियों के साथ किया था। तो उसी प्रकार उसी वचन को पूर्ण करने के लिए कृष्ण उधर वही लीलाएं माधुर्य परकीय लीलाएं उधर संपन्न करते हैं। वो केवल गौड़ी वैष्णव देख सकते हैं। श्री वैष्णव जो है ये जो है ये लीलाओं को भले ही कभी कभी बात करते हैं लेकिन दास के रस प्रदान होने की वजह से वो ये सब क्योंकि उनका ये नहीं रहे। तो अभी हम समाप्त करेंगे इधर। ऐसे बहुत सारे बातें कह सकते हैं क्योंकि ये अनंत विषय है, अनादार विषय है। ये चार वैष्णवाचार्य चार संप्रदाय वो सिद्धांत ये जानने से आपको ये जो गौड़ी वैष्णव सिद्धांत और अच्छी तरह से प्रकट हुए और अच्छे से समझ में आता है। मान लीजिए कि अगर मान लो आपको कोई चीज समझाना है कोई चीज की तुलना में समझाएंगे तो थोड़ा सा समझ में आता है, पैसे बताने लग जाएंगे तो उसको समझ नहीं आता। कंपैरिजन इसको उपमान उपमेय कहा जाता है। तो उपमान उपमेय के द्वारा जब गौड़ी वैष्णव सिद्धांत की चर्चा करेंगे चार वैष्णव सिद्धांत के संबंध में तो ये चार वैष्णव सिद्धांत का प्रति आकर्षण और गौड़ी वैष्णव सिद्धांत के समर्पण ये हृदय में स्वावैष्णव से प्रकट होता है। ऐसे तो समर्पण हमारा गौड़ी वैष्णव सिद्धांत के प्रति है लेकिन उसको और बढ़ाने के लिए इस चार वैष्णव आचार्यों के सिद्धांत के आकर्षण को उत्पन्न करना। तो कभी और विस्तार से ये चार वैष्णव संप्रदाय का आचार्य उनके सिद्धांत के उनके लीलाओं के ऊपर कभी सेमिनार लेंगे लेकिन उनके लिए एक दिन नहीं, कम से कम एक डेढ़ घंटे का तो 15-20 दिन देखिए ठीक है विस्तार से करना है। हरे कृष्ण शिवा रामाचार्य की जय।